अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री श्रीनिवासुलु सर एवं टीम रेडियो साई के प्रिय सदस्य श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी।
राधा प्यारे जय गोपाल।
रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने श्री कृष्ण भगवान की आराधना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं।
राधा प्यारे जय गोपाल, राधा माधव जय गोपाल, वृंदावन के जय गोपाल, मुरली मनोहर जय गोपाल।
आज की कक्षा के लिए इस भजन को जी पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे सफेद पांच या सी अर्थात सफेद एक का मध्यम भी कहते हैं।
राधा प्यारे जय गोपाल,
राधा प्यारे जय गोपाल,
राधा प्यारे जय गोपाल,
राधा प्यारे जय गोपाल,
राधा माधव जय गोपाल,
राधा माधव जय गोपाल,
राधा माधव जय गोपाल,
राधा माधव जय गोपाल,
वृंदावन के जय गोपाल,
वृंदावन के जय गोपाल,
वृंदावन के जय गोपाल,
वृंदावन के जय गोपाल,
मुरली मनोहर जय गोपाल,
मुरली मनोहर जय गोपाल,
मुरली मनोहर जय गोपाल,
मुरली मनोहर जय गोपाल,
जय गोपाल 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 जय गोपाल,
राधा प्यारे
जय गोपाल।
कहरवा ताल और अधिकतर राग दरबारी पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद आइए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। वैसे तो हम इस भजन में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों से वाकिफ हैं, पर फिर भी चलिए उनमें से कुछ एक में निहित गूढ़ मर्म को समझने का प्रयास करते हैं। राधा, राधा जी कौन हैं? वे किस तत्व की द्योतक हैं? सन 1978 के समर कोर्स के दौरान दी गई दिव्य संभाषण माला में भगवान ने बताया था कि गोकुल के समीप ही वृषभापुर नामक एक स्थान था, राधा जी वहीं पर रहती थीं। उन्हें अपने प्रकृति स्वरूपा होने का पहले से ही ज्ञान था, प्रकृति के परमात्मा के साथ संबंध का भी उन्हें पूरा ज्ञान था। चूंकि ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का ही प्रक्षेपण है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का संबंध बिंब प्रतिबिंब समान है। शारीरिक तौर पर राधा जी श्री कृष्ण जी से 9 साल बड़ी थीं। राधा जी नंद बाबा की रिश्ते से बहन भी लगती थीं। जब से कृष्ण भगवान नंद यशोदा जी के घर प्रकट हुए थे, तब से राधा जी श्री कृष्ण जी के समीप होती चली गईं। हर समय वे श्री कृष्ण जी के बारे में ही सोचती रहती थीं और उनका नाम स्मरण करती रहती थीं। उनकी दिनचर्या का हर कार्य श्री कृष्ण जी से जुड़ा रहता था। उनकी भक्ति इतनी पवित्र थी कि उसमें सांसारिक भावनाओं के लिए लेश मात्र भी स्थान नहीं था। इसीलिए उन्हें भगवान के प्रति निर्मल प्रेम स्वरूपणी के रूप में, एक आह्लादनी शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। राधा जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सन 78 की उसी समर कोर्स प्रवचन माला में स्वामी कहते हैं कि राधा केवल एक स्त्री का नाम भर ही नहीं है। जो भी भक्त अपने मन, वचन और कर्म को भगवान की शरण में अर्पित कर देता है, वो ही राधा है। स्वामी ने यह भी कहा है कि राधा जी से सीख मिलती है कि हमें न केवल अपने मस्तक को ज्ञान विज्ञान से भरना है, बल्कि अपने हृदय को भी गहरे प्रेम से भर लेना है। राधा जी हमें बताती हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा हम सन्मार्ग से भटक जाएंगे। श्री राधा जी हमें यह भी सिखलाती हैं कि हमें इस अस्थाई क्षणिक जगत का साथ छोड़ देना चाहिए और अपने ध्यान को सनातन तत्व पर केंद्रित करना चाहिए। उनका कहना है कि हमें इस जगत पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो बदलता रहता है। मृत्यु से डरना नहीं है और ईश्वर को कभी भूलना नहीं है। हम सबको हमेशा हर घड़ी हर अवस्था में ईश चिंतन के आनंद में मग्न रहना चाहिए। राधा जी ये भी सिखाती हैं कि दूसरों को उन्नति करते देख हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भगवान ने गोपाल शब्द का गूढ़ार्थ समझाते हुए कहा है कि गो का अर्थ है जीव, प्राणी, व्यक्ति। गोपाल का अर्थ है जो आत्मा रूपी गायों का पालन पोषण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, शांति से उन्हें मस्ती में घास चरने देते हैं और शाम होते ही उन सबको सकुशल गौशाला में सुरक्षित वापस ले आते हैं। इस प्रकार हरेक प्राणी उनके प्रेम की समर्थ छत्र छाया में पलता है। प्रभु जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या लाभकारी है और वे हमें हानि से बचाते हैं। गोपाल शब्द की एक और व्याख्या है कि गो का अर्थ है इंद्रियां। तो गोपाल वे हैं जो हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका इस्तेमाल सही ढंग से और सही दिशा में हो। वे इंद्रियों का उपयोग हमसे इस तरह से करवाते हैं जिससे हमारी चेतना भौतिक स्तर से दिव्य स्तर की ऊंचाइयों को छू सके। भगवान ने एक और दृष्टिकोण दिया है। स्वामी ने कहा है कि जब एक गाय बछड़े को जन्म देती है तो वो तुरंत अपनी जिह्वा से उस शिशु पर लगी मैल को साफ कर देती है। उसी प्रकार प्रभु गोपाल स्वामी भी हमारे मन पर छाई मलिनता को साफ करते हैं। अतएव हमें सदैव अपना मन भगवान में ही लगाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने मुरली या बांसुरी को ही अपने प्रिय वाद्य यंत्र के रूप में क्यों चुना? इसका क्या अंतरार्थ है? सन 1957 में वेंकटगिरी महाराजा के यहाँ अपने एक वार्षिक प्रवास के दौरान भगवान ने बतलाया कि बांसुरी ही एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो अंदर से एकदम खाली रहता है और दोनों छोर मुक्त रहते हैं, कहीं कोई भी प्रकार का बंध नहीं रहता। तुम सभी को भी बंसी की ही तरह अपने भीतर से अपने आप को अहंकार एवं सभी विकारों से रिक्त कर लेना है, तब भगवान आएंगे, तुम्हें उठाएंगे और अपने अधरों से लगाकर श्वास फूकेंगे, अर्थात प्राण फूकेंगे। तब तुम्हारे अंदर जो अहंकार शून्य होने के कारण खालीपन है, उसमें भगवान एक सुमधुर मनमोहक गीत का सृजन करेंगे, जिससे पूरी सृष्टि आनंद से झूमने लगेगी। स्वार्थ रहित होकर सीधे और सरल बने रहो। अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में तब्दील कर दो। केवल भगवान की श्वास को अपने भीतर लो। यही दिव्य जीवन है। शाब्दिक तौर पर मनोहर का अर्थ है मन को मोह लेने वाला। मनोहर का एक गूढ़ार्थ भी है। पुराणों में वर्णन है कि एक समय देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें उन्होंने अमृत पाने के लिए क्षीर सागर मंथन करने का निश्चय किया ताकि वे अमर हो सकें। अमृत वितरण के समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर आह्लादित करने वाला एक नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। सभी राक्षस वासनाग्रस्त हो अपनी शुद्ध बुद्ध एवं अमृत पाने की लालसा दोनों खो बैठे। इस प्रसंग में मोहिनी को हम भगवान की माया के रूप में समझ सकते हैं, जो हमारे भीतर मन के रूप में स्थित है। असुर मोहिनी रूपी माया के फेर में पड़कर अमृत तत्व को खो बैठे, इसीलिए हमें स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की माया भी हमें हर पल भ्रमित करती रहती है, लेकिन हमें मन ही मन प्रभु चरणों को दृढ़ता से पकड़े रहना चाहिए। अगर हम सब ऐसा करें तो अमरता को अवश्य प्राप्त होंगे। तो आइए इन्हीं भावनाओं के साथ ओतप्रोत हो हम सब एक बार पुनः इस भजन को दोहराते हैं।
राधा प्यारे जय गोपाल,
जय गोपाल।
जय गोपाल,
मुरली मनोहर जय गोपाल,
जय गोपाल जय गोपाल,
इसी के साथ हमारी आज की कक्षा अब यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आपको हमारा आज का ये प्रशिक्षण पसंद आया होगा। हम शीघ्र ही आपके समक्ष एक और भजन लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय साईं राम।